जिस समय नामोर सिंह की पुस्तक कविता के नए प्रतिमान प्रकाशित हुई थी, उस समय इसको दृष्टि में रखकर नामोर सिंह की समीक्षा में रूपवादी प्रवृत्ति के बढ़ते हुए प्रभाव की शिकायत की गई थी। 1974 ईस्वी में नामोर सिंह ने अपनी पुस्तक के दूसरे संस्करण में इसका जवाब देते हुए कहा, जो मार्क्सवादी आलोचना के विकास के लिए प्रयत्नशील है वे जानते हैं कि अंग्रेजी नई समीक्षा को साम्राज्यवादी साजिश या पतनशील पाश्चात्य प्रवृत्ति कहकर टाला नहीं जा सकता। नामोर सिंह का पक्ष यह है कि मार्क्सवादी समीक्षा को अधिक संगत, प्रभावी और पूर्ण बनाने के लिए अंग्रेजी नई समीक्षा के रूप तत्व पद्धति को स्वीकार करने में कोई हानि नहीं है। अंग्रेजी के मार्क्सवादी समीक्षक अर्नाल्ड केटल ने भी नए समीक्षक डॉक्टर एफ आर लिविस का ऋण स्वीकार किया है। इधर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग द्वारा आयोजित निराला व्याख्यान माला के अंतर्गत कविता के नए प्रतिमान पुनर्विचार विषय पर अपना वक्तव्य देते हुए नामोर सिंह ने अपनी पूर्व स्थापनाओं में संशोधन किया है। उनका कहना है, नई कविता के चलते याम धारणा बनी कि बड़ा कवि वह है, सार्थक और महत्वपूर्ण कवि वह है जो आइडियोलॉजिकल नहीं है। विचारधारा कविता के दुश्मन है। अनुभूति की प्रामाणिकता की मुख्य आधारशिला यही थी कि कविता में विचारधारा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है अनुभूति की प्रामाणिकता, और अनुभूति की प्रामाणिकता के आधार पर वह कविता महत्वपूर्ण है जिसमें अनेक विरोधी विचारों का बहुत ही नाजुक संतुलन हो। कवि स्पष्ट रूप से अपना पक्ष स्पष्ट न करे, बल्कि विभिन्न विचारधाराओं का द्वंद्व, उनकी टकराहट दिखाए, उनका तनाव दिखाए। इसी क्रम में नामोर सिंह ने स्वीकार किया है कि दूसरे महायुद्ध के बाद नई आलोचना अमेरिकी विश्वविद्यालयों की सरकारी विचारधारा बन गई थी। वे कहते हैं, तो यह है शीत युद्ध का काव्यशास्त्र, कोल्ड वार पोएटिक्स। अमेरिकन नई समीक्षा की सारी शब्दावली विचारधारा के अंत की शब्दावली है, यानी जहां एक खास तरह का झलका हो, एम्ब्यूगिटी हो। एक जमाने में रघुवीर सहाय ने इसके लिए बड़ा ही अच्छा शब्द दिया था, उभय संभव, यानी यह भी संभव वह भी संभव। कविता में एक खास तरह की जटिल अनिश्चयता, यह अनिश्चयता की सुविधा और दर्द में अनेक कविताएं लिखी गई थी, तो यह जटिलता, विसंगति, विडंबना, तनाव, यह सभी अमेरिकी प्रचार तंत्र के अंग थे। यह शीत युद्ध की स्ट्रेटजी थी, और मित्रों यह हमारे तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल पड़ती थी। कविता के नए प्रतिमान के संबंध में वे स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं। कविता के नए प्रतिमान का रूपवाद यह है कि उसमें रूपवाद की आलोचना भी रूपवादी ढंग से की गई है, अर्थात तार्किक आधार पर उसका खंडन किया गया है, ऐतिहासिक आधार पर नहीं किया गया है। जटिलता, विसंगति, अनुभूति की प्रामाणिकता आदि के मूल में जो राजनीतिक काम कर रही थी, उसका खंडन नहीं किया गया है। सन 1982 ईस्वी में नामोर सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज प्रकाशित हुई। यह पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई है। इसमें आचार्य द्विवेदी द्वारा संकेतित उस मौलिक इतिहास दृष्टि को प्रतिष्ठित करने की चेष्टा की गई है जिसके आधार पर आचार्य द्विवेदी ने भारतीय संस्कृति और साहित्य की लोकोन्मुखी क्रांतिकारी परंपरा को जीवित करने का प्रयत्न किया था। डॉक्टर नामोर सिंह इसी परंपरा को हिंदी साहित्य की प्रगतिशील परंपरा मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस परंपरा का बीज वपन किया था। नामोर सिंह इसे केंद्र में रखकर हिंदी साहित्य के इतिहास की व्याख्या में प्रवृत्त हैं। द्विवेदी जी ने जो विरह की चिरंगी मेली थी, डॉक्टर सिंह उसे फूंक कर सुलगा रहे हैं। इधर आप कविता की भी दूसरी परंपरा का अनुसंधान कर रहे हैं। उनके अनुसार नई कविता के बाहर तो दूसरी परंपरा है, उसके वाहक नागार्जुन और त्रिलोचन है। नामोर सिंह की नवीनतम प्रकाशित पुस्तक वाद विवाद संवाद है। इसमें समकालीन भाषा, साहित्य और आलोचना, कर्म की बुनियादी चिंताओं से संबद्ध विषयों, जनतंत्र और समालोचना, आलोचना के स्वायत्तता, आलोचना के संस्कृति और संस्कृति की आलोचना, कविता की राजनीति, आलोचना और संस्था, आलोचना की भाषा, प्रगतिशील साहित्य धारा में अंध लोकवादी रुझान पर विचार किया गया है। वस्तुतः इन निबंधों में प्रगतिशील चिंतन को वर्तमान संदर्भ में आगे बढ़ाया गया है, और मार्क्सवादी समीक्षा पर जो अनेक कोणों से प्रत्यक्ष प्रच्छन्न प्रहार हो रहे हैं, उनका सतर्क साधार जवाब दिया गया है। परिच्छन्न प्रहार पूर्वाग्रह पत्रिका की ओर से किए गए हैं। इसीलिए जनतंत्र और समालोचना, आलोचना की स्वायत्तता, आलोचना की संस्कृति और संस्कृति की आलोचना आदि कई निबंधों के केंद्र में पूर्वाग्रह पत्रिका और उसमें मार्क्सवादी समीक्षा के प्रतिपक्ष में प्रस्तुत अशोक वाजपेयी के वक्तव्य हैं। जनतंत्र और समालोचना में अशोक वाजपेयी के इस कथन विकल्पों की संभावना जनतंत्र का मूलाधार है का उत्तर देते हुए नामवर सिंह कहते हैं, विकल्पों की संभावना अराजकता है और यह अराजकता उसके लिए अत्यंत अनुकूल होती है जो राजसत्ता में है। इसी क्रम में वे कहते हैं, विकल्पों की संभावना जनतंत्र का मूलाधार नहीं बहुलतावाद है। यह बहुलतावाद अमेरिकी राजनीति का प्रधान अस्त्र है। नामवर सिंह के अनुसार अमेरिकी बहुलतावाद का मुख्य शत्रु मार्क्सवाद है और इस मामले में अशोक वाजपेयी पीछे नहीं है। ज्यादा सही यह है कि वे अमेरिका के पीछे पीछे हैं। वस्तुतः बहुलतावाद विचारधारा मात्र का विरोधी है। आलोचना की स्वायत्तता का प्रश्न भी पूर्वग्रह ने ही उठाया था। नामवर सिंह अनुभव करते हुए हैं कि यह प्रश्न भी विचारधारा के विरोध में ही उठाया गया है, किंतु विडंबना यह है कि स्वायत्तता शब्द स्वयं अमेरिकी राजनीतिक विचारधारा की देन है। स्वायत्तता ही नहीं एक नई समय नई आलोचना के बहुप्रचलित सभी पारिभाषिक शब्द टेंशन विडंबना जेस्चर एम्बिग्यूटी कम्प्लेक्सिटी आदि गैर साहित्यिक प्रयोजनों को सिद्ध करते रहे हैं। नामवर सिंह के शब्दों में शीत युद्ध से ग्रस्त अमेरिकी समाज में इन शब्दों ने राजनीतिक भूमिका भी निभाई थी। यह बात उस समय भले ही प्रकाश में न आई हो आज स्वयं अमेरिकी आलोचना में खुलकर कही जा रही है। इस निबंध में नामवर सिंह ने अत्यंत संक्षेप में विचारधारा को परिभाषित भी किया है। उन्होंने कहा है, विचारधारा विचार मात्र नहीं बल्कि अनुभूतियों की ऐसी संरचना है जिसमें अनेक प्रतीक मिथक आदि भी घुले मिले रहते हैं। विचारधारा बहुत कुछ संस्कार की तरह समूचे अस्तित्व का ऐसा अंग बन जाती है कि उससे आसानी से छुटकारा संभव नहीं होता। आलोचना की संस्कृति और संस्कृति की आलोचना निबंध भी अशोक वाजपेयी के एक संपादकीय के प्रतिवाद में लिखा गया है। अशोक वाजपेयी ने लिखा था, साहित्य अपनी विशिष्ट संस्कृति भी विकसित करता है। यह साहित्यिक संस्कृति साहित्य में सक्रिय शक्तियों और दृष्टियों के बीच संवाद का शील निरूपण करती है, सीमाएं निर्धारित करती है, खेल के नियम बनाती है ताकि कुछ सीमाओं का अतिक्रमण न हो सके। नामवर सिंह के अनुसार साहित्य की संस्कृति का यह नारा एक प्रकार का संस्कृतिवाद है। यह संस्कृतिवाद संतुलन और सामंजस्य के नाम पर वस्तुतः अभिजात वर्ग की सत्ता को चुनौती देने वाले नए वर्ग के उदय और उसके कारण उत्पन्न संघर्ष चेतना का शमन करना है। संस्कृति की मूल अवधारणा को संकुचित करता है, साहित्य में कलावाद और रूपवाद का पोषण करता है। नामवर सिंह के शब्दों में संस्कृतिवाद एक ऐसी विचारधारा है जो जीवन की सारी समस्याओं को समेट कर संस्कृति की समस्या बना देती है, क्योंकि उसके अनुसार जीवन की तमाम समस्याएं सिर्फ संस्कृति की समस्याएं हैं। इस पुस्तक का एक महत्वपूर्ण निबंध मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र के विकास की दिशा है। इसमें नामवर सिंह ने यह स्पष्ट करना चाहा है कि मार्क्सवाद का जन्म एक आलोचनात्मक दर्शन के रूप में हुआ है, इसलिए खंडन मंडन उसकी प्रकृति है। उसके सौंदर्य शास्त्र को सूत्रबद्ध करने में सरलीकरण का खतरा है। रूस का उदाहरण देते हुए वे कहते हैं, पहला उदाहरण है रूस सोवियत संघ में समाजवादी यथार्थवाद का शास्त्र निर्माण। शास्त्र बनते ही सामाजिक यथार्थ भी सूत्रबद्ध हो चला और उस यथार्थ को अभिव्यक्त करने की शैली भी। देखते देखते एक नया रीतिवाद चल पड़ा, रचना में भी और आलोचना में भी। तात्पर्य है कि मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र आज विकास की जिस अवस्था में है उसको देखते हुए उसके शास्त्र का निर्माण घातक होगा। युवा लेखन का आकलन तो नामवर सिंह बराबर करते रहे हैं। इधर के युवा लेखन के विषय में उनका कहना है, युवा लेखन का रचना संसार निसंदेह बेहद खूंखार भयावह और अजनबी है, किंतु अपनी सृजनशीलता के द्वारा वह यह भी व्यंजित कर देता है कि यथार्थ नहीं बल्कि यथार्थ का कलात्मक भ्रम है और यह मायावीपन भी ही उसकी कलात्मकता का रहस्य है। उन्होंने यह भी लक्षित किया है कि युवा लेखन का युग बोध खंडित नहीं है। वह कहते हैं, युवा लेखन कविता और कथा दोनों विधाओं में व्यक्त होने वाला एक समेकित आंदोलन है। पिछले युग के नवलेखन के समान नई कविता में कुछ और तथा नई कहानी में कुछ और जैसा विभक्त और खंडित युगबोध नहीं। वस्तुतः आज की युवा पीढ़ी को न तो आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने का मौका मिला, न स्वाधीन भारत के निर्माण की सुविधा मिली। इस प्रकार वह इतिहास से बाहर रहे। इसलिए युवा लेखन में निहित मानव में गहरे स्तर पर अपनी नगण्यता का बोध बद्धमूल है। आत्मदया, असहायता, आक्रोश, जिज्ञासा, उदासीनता आदि सभी मनस्थितियाँ इसी नगण्यता से ही उत्पन्न और परिचालित होती हैं। नामवर सिंह ने साहित्य में प्रगतिशील आंदोलन की ऐतिहासिक भूमिका पर भी विचार किया है। इस निबंध में हिंदी में प्रगतिशील आंदोलन का इतिहास देने के साथ इन्होंने प्रगतिवाद के विकास और यथार्थ की व्याख्या भी की है। मुक्तिबोध के साक्ष्य पर डार्विन के विकासवाद से प्रगतिवाद के विकासवाद को अलग करते हुए वे कहते हैं, दार्शनिक दृष्टि से प्रगतिवाद ऐसे विकासवाद में विश्वास करता है जो डार्विन के विकासवाद से भिन्न है, क्योंकि वह कार्य कारणवाद को यांत्रिक अर्थ देता है। इस विकासवाद के विपरीत प्रगतिवाद का विकास द्वंद्वात्मक गतिविधि का अभिभूत और अधिक स्वतंत्र है। तात्पर्य है कि विकास में इच्छा शक्ति की भूमिका का महत्व है। यथार्थ को स्पष्ट करते हुए भी कहते हैं, यह यथार्थ कोई बात नहीं है, या न कोई अमूर्त विचार है, न मनुष्य निरपेक्ष कोई भौतिक गुण। अगर कुछ है तो मनुष्यों के माध्यम से जीवन में व्यक्त होने वाली सच्चाई। प्रगतिशील कला व्यवस्था यथार्थ किसी समझ से संभव है। आज वामपंथ के गहरे संकट का एहसास करते हुए नामवर सिंह लक्षित करते हैं, आज प्रगतिशील शिविर में भी परंपरावाद का नया उभार स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। साहित्य में भी और राजनीति में भी इतिहास बनाने वाले इतिहास लिखने में व्यस्त हैं। दृष्टि आगे की ओर नहीं पीछे की ओर है। अतीत की रक्षा में भविष्य की आशा दिखती है। भविष्य इतना निश्चित हो चला है कि आस्था टिकाने के लिए अतीत का ही आधार रह गया है। लोग भूलते जा रहे हैं कि परंपरा की रक्षा प्रगति से ही संभव है। नामवर सिंह की समीक्षा दृष्टि को समझने के लिए आलोचना पत्रिका में समय समय पर प्रकाशित उनकी टिप्पणियां और लेख भी विचारणीय हैं। उनकी एक संपादकीय टिप्पणी एक नया काव्यशास्त्र त्रिलोचन के लिए, इसमें नामवर सिंह ने प्रतिपादित किया है कि त्रिलोचन की कविता हिंदी की जातीय कविता है। उनकी कविता में मानवीय सामाजिक संबंधों की गरमाई के बीच मनुष्य की व्यक्तिकता भी अक्षुण है। उन्होंने पश्चिमी आधुनिकता को पीठ देकर अपनी काव्य यात्रा शुरू की थी। उनकी कविता हिंदी की अपनी परंपरा से निकली हुई नई कविता है, जो जीवंत शब्दों की दीप्ति से दमक रही है। नामवर सिंह के शब्दों में उस दौर की आधुनिकतावादी कविताओं के साथ रखकर देखें तो प्रयोग और प्रगति के नाम पर लिखी जाने वाली कविताओं से कितनी अलग। हर तरह की अंग्रेजियत के खिलाफ भाव में भी भाषा में भी यह है ठेठ हिंदी की कविता, हिंदी की नई कविता, हिंदी की अपनी परंपरा से निकली हुई आधुनिक लेकिन भारतीय, न पश्चिम से आयातित न आतंकित। इस प्रकार नामवर सिंह की दृष्टि नई कविता के बाहर हिंदी की अपनी जातीय परंपरा से विकसित नई कविता पर भी गई है। किसी भी आलोचक की आलोचना दृष्टि को परखने के लिए उसके द्वारा प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दों का विवेचन विश्लेषण भी आवश्यक है। प्रत्येक पारिभाषिक शब्द किसी न किसी मूल्यबोध या विचारधारा से जुड़ा होता है और संदर्भ विशेष में प्रयुक्त होकर अपने को संगत और सार्थक बनाता है। समीक्षक प्रत्येक शब्द को तौलकर उसके प्रयोगगत औचित्य का आकलन करके तथा उसके मूल में विद्यमान जीवन दृष्टि को समझकर उसे अपनी समीक्षा में स्थान देता है। इसलिए जीवन दृष्टि संपन्न समीक्षक की मानसिक यात्रा को सूत्रबद्ध करने और उसके रुझान की सही पहचान के लिए उसके द्वारा प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दों पर दृष्टिपात करना आवश्यक है। अपने पूरे समीक्षा कार्य में नामवर सिंह ने जिन पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया है वे निश्चय ही उनकी प्रगतिशील समीक्षा दृष्टि के परिचायक हैं। उन्होंने भाववादी कला दृष्टि से संबद्ध पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग भी किया है, किंतु वह प्रायः प्रतिपक्ष के विचार दृष्टि को सामने रखकर उसका प्रतिवाद करने की दृष्टि से प्रयुक्त हुए हैं। उनके द्वारा प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दों में व्यक्तिवाद, प्रगतिवाद, यथार्थवाद, मानवतावाद, सामाजिक यथार्थ, भाववादी दृष्टि, भावबोध, प्रयोगवाद, वर्ग चेतना, द्वंद्वात्मक प्रणाली, आलोचनात्मक यथार्थवाद, अनुभूति की प्रामाणिकता, जटिलता, एम्ब्यूगिटी, द्वंद, तनाव, विसंगति, विडंबना, वस्तुनिष्ठता, बोधशक्ति, सर्जनात्मक भाषा, बिंबात्मकता, सपाट बयानी, फैंटेसी, नाटकीयता, संरचना, प्रगीतात्मकता, एकालाप, अर्थमीमांसा, रसध्वनि, विचारधारा, बहुलतावाद, स्वायत्तता, संस्कृतिवाद, कलावाद, रूपवाद, आधुनिकतावाद, समाजवादी, यथार्थवाद, परंपरावाद आदि प्रमुख हैं। इन शब्दों का तात्पर्य उनके द्वारा व्यक्त विचारों के संदर्भ वैशिष्ट्य से जुड़कर अपने आप खुलता गया है। बीच बीच में उन्होंने कुछ शब्दों की व्याख्या भी की है। इन शब्दों का प्रयोग क्रम में उन्होंने इनके सामाजिक राजनीतिक परिवेश को भी स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। कविता के नैपितमान लिखते समय अमेरिकी नई समीक्षा से गृहित जिन पारिभाषिक शब्दों के पीछे कार्य करने वाली राजनीतिक चेतना का उद्घाटन उन्होंने उस समय नहीं किया था, उसे अब खोलकर रख दिया है। विचारधारा की व्याख्या इधर मार्क्सवादी समीक्षा में विशेष रूप से की जा रही है। इसको जिस रूप में नामवर सिंह ने अत्यंत संक्षेप में स्पष्ट किया है वह उनकी सूक्ष्म दृष्टि का परिचायक है। विचारों को सूत्रबद्ध करके उन्हें शास्त्र का रूप देने से किस प्रकार रीतिवाद का खतरा पैदा हो जाता है और मार्क्सवादी चिंतन भी इस रीतिवाद का शिकार हुआ है, इस ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करके उन्होंने अपनी सजगता का परिचय दिया है। वामपंथी चिंतन को निरंतर गतिशील रखने और उसे परंपरा मोह से बचाने की दिशा में उनका प्रयास सराहनीय है। नामवर सिंह ने मार्क्सवादी और भाववादी दोनों प्रकार की समीक्षाओं का गहरा अध्ययन किया है। दोनों क्षेत्रों की नवीनतम गतिविधियों से उनका गहरा परिचय है। नई से नई रचना को परखने और उस किताब में प्रवेश करने की उनकी क्षमता अद्भुत है। उनकी इस क्षमता का मार्क्सवादी प्रगतिशील समीक्षा का पूरा लाभ मिला है। उन्होंने अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्दों का भी आवश्यकता अनुसार निसंकोच प्रयोग किया है, किंतु यह प्रयोग अभिव्यक्ति के सार्थक, प्रामाणिक और प्रासंगिक बनाने के लिए ही किया गया है। उनकी मान्यता है कि आलोचना इतिहास का अंग नहीं है, इतिहास ही आलोचना का अंग है। हमारा विश्वास है अपनी आलोचना से वे हिंदी का नया इतिहास बनाने में सफल होंगे।